पृष्ठ संख्या 348, अध्याय 13, वृद्ध कल्याण, वेलफेयर ऑफ द एज्ड। भारत में वृद्ध की सरकारी रूप में स्वीकृत परिभाषा थी 55 वर्ष सेवानिवृत्त की आयु जब कर्मचारी सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। बाद में इसे 58 वर्ष कर दिया गया। पश्चिमी देशों में व्यक्ति को उस समय वृद्ध माना जाता है जब वह 60 से 65 वर्ष की आयु के मध्य पहुंच जाता है। वृद्धायु का निर्धारण जीवन प्रत्याशा के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। इस शताब्दी के आरंभ में यह 23 वर्ष थी, जो 1951 में 32 वर्ष हो गई, एवं गत 3 दशकों में 51 वर्ष हो गई, जो शताब्दी के अंत तक 60 वर्ष से अधिक हो जाएगी। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के पहले ही 65 से 78 वर्ष है। आयु प्रत्याशा के बढ़ जाने से मांग की गई कि सरकार को सेवानिवृत्त आयु 58 से बढ़ाकर 60 कर देनी चाहिए। जनगणना आंकड़ों के अनुसार 1981 में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 42.5 बिलियन थी। यह हमारे देश की कुल जनसंख्या का 5% से अधिक है। इस समय 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 60 मिलियन से अधिक है। एज केयर के अनुमानानुसार सन 2000 तक वृद्धों की आयु 77 मिलियन कुल जनसंख्या का 7.7% हो जाएगी। चिकित्सीय सुविधाओं की वृद्धि से अस्पष्टया वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अधिकांश वृद्ध व्यक्ति देहातों में रहते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या का स्वरूप ग्रामीण है। ग्रामीण क्षेत्रों में 60 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों का अनुपात 60 वर्ष से कम आयु वाले लोगों से अधिक है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश वृद्ध व्यक्ति जीवन के सायंकाल में अपने देहात में बसना चाहते हैं, क्योंकि देहातों एवं छोटे नगरों में उनका मूल रहा है। भारत में 75% वृद्ध अपने बड़े बच्चों के पास रहना चाहते हैं। कारण है कि इस देश के अनेक क्षेत्रों में अभी तक प्राचीन रीति रिवाज चल रहे हैं, यद्यपि यह शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। वृद्धायु वरदान अथवा अभिशाप, ओल्ड एज अ ब्लेसिंग आर अ कर्स। कुछ एक व्यक्ति वृद्धायु पहुंचने की दशा में अपनी प्रतीक्षा करते हैं और उन्हें परिवार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अनेक वर्षों के परिश्रम एवं सेवा के बाद आराम मिलेंगे। उन पर कोई मानसिक दबाव नहीं होगा, वे स्वतंत्रतापूर्वक एवं आराम से आनंद भोग करेंगे। वे वृद्धायु जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल समझते हैं, जब वे उन कार्यों को कर सकते हैं जिनको करने के लिए उनके पास पहले समय नहीं था। कुछ एक के लिए यह समय अपने पौत्रों के साथ व्यतीत करने तथा सुखद संपर्क बनाने, व्यस्त रहने, अपने बाल्यकाल को ताजा करने, देश विदेश में अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों से मिलने, देवताओं के आशीर्वाद लेने हेतु धर्म स्थलों पर भ्रमण करने, प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों पर घूमने तथा चिंता मुक्त रहने का समय है। उनके बच्चे जिनका पालन पोषण करने, शिक्षा का प्रबंध करने, विवाह की व्यवस्था करने, उनके लिए अचल एवं चल परिसंपत्ति जुटाने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया है, अब उनकी देखभाल करेंगे। इस प्रकार वे वृद्धायु को अनेक आशाओं, प्रत्याशाओं एवं वरदानों से भरपूर अपने जीवन का उषाकाल समझते हैं। पृष्ठ संख्या 349। परंतु जब वृद्धायु आ जाती है एवं उन्हें वास्तविक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो वे इसे इतना सुंदर नहीं पाते जितनी उन्होंने प्रत्याशा की थी। दूसरी ओर यह उनके लिए अभिशाप सिद्ध होगी जब उनकी आय काफ़ी कम हो जाती है। यद्यपि पेंशन मिलती है, स्वरोजगार व्यक्तियों में यह शून्य हो जाती है, तब वे बीमारी के कारण कार्य नहीं कर पाते, उनकी मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों का ह्रास होने लगता है तथा वे किसी न किसी रोग का शिकार हो जाते हैं। बीमार होने पर उनकी दशा दयाशील हो जाती है, वह बिस्तर से नहीं उठ सकते तथा करवट लेने के लिए उनको दूसरों के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल पाता और न ही अच्छा भोजन, क्योंकि बच्चे उन्हें भार समझते हैं जो उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। जिन आशाओं की उन्होंने कल्पना की थी एवं जिन वस्तुओं का आनंद उन्नत का उन्होंने स्वप्न लिया था, केवल एक भ्रम बनकर रह जाते हैं। वृद्धों की स्थिति, स्टेट ऑफ द एज्ड। किसी समय वृद्धों का भारतीय समाज की परंपराओं एवं इसके सामाजिक मूल्यों के कारण बड़ा आदर होता था। हिंदू संयुक्त प्रणाली उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी तथा उनका पूरा देखभाल करती थी। वे परिवार के अध्यक्ष थे तथा निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ग्रामीण कृषि समाज में वे घर के बड़े बुजुर्ग थे। वे परिवार के बजट पर नियंत्रण रखते थे तथा न केवल परिवार के द्वारा पारिवारिक मामलों पर उनका परामर्श लिया जाता था, अपितु गांव के मामलों में भी परिवार द्वारा उनसे परामर्श किया जाता था, क्योंकि उन्हें ज्ञान, बुद्धि, अनुभव एवं दूरदर्शिता का प्रकाश स्तंभ समझा जाता है। परंतु अब स्थिति में परिवर्तन आ गया है। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता के कारण उत्पन्न सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संरचना एवं अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों के कारण संयुक्त प्रणाली का विघटन हो गया है। दरिद्रता, बेकारी, अर्थरोजगारी एवं मूल्य वृद्धि ने परिवार के सदस्यों को वृद्धों के प्रति अपने दायित्व पूरा करने में अयोग्य बना दिया है। पीढ़ी का फासला बढ़ता जा रहा है, युवकों का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी बनता जा रहा है एवं वृद्धों के प्रति उनका आदर भाव कम होता जा रहा है। आर्थिक विषमताओं के कारण अनेक परिवार अपना निर्वाह अच्छी प्रकार से करने में नहीं है, जिनका वृद्धों एवं अशक्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उन्हें स्वयं ही अपनी देखभाल करनी होती है। देहातों में भी स्थिति बदल जाती है। पथ प्रदर्शक एवं देहात का मुखिया होने की स्थिति में बदल गई है। दूसरी ओर उन्हें अपने ही बच्चों के साथ समंजन करना, पीढ़ी का अंतर एवं विभिन्न दृष्टिकोण होने के कारण कठिन प्रतीत होता है। परिणाम स्वरूप वृद्धों को ही बच्चों के सामने पारिवारिक शांति के लिए घुटने टेकने पड़ते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका बच्चों के साथ जीवन यातनापूर्ण बन जाता है एवं उनमें अनावश्यक बन जाने की भावना बल पकड़ लेती है। इस प्रकार वृद्धों को अनेक पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। पृष्ठ संख्या 350, वृद्धों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड। जैसा उपरोक्त वर्णित किया गया है, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण वृद्धों के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर एक, आर्थिक अथवा वित्तीय समस्याएं, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अधिकांश वृद्धों की आर्थिक समस्याएं हैं। पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की भी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं होती, क्योंकि मूल वृद्धि के कारण उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है एवं वे अपना निर्वाह तक भी कर सकने में असमर्थ होते हैं तथा यदि उन्हें अभी सामाजिक उत्तरदायित्व यथा कन्या विवाह आदि पूरे करने हैं तो स्थिति और भी अधिक गंभीर हो जाती है। दूसरे, वृद्ध व्यक्तियों की स्थिति तो अधिक शोचनीय है, क्योंकि बेकारी, अर्ध बेरोजगारी अथवा कम आय होने के कारण बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर सकते तथा देशव्याप्त बेरोजगारी के कारण उन्हें रोजगार नहीं दे सकता। युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने के दृष्टिकोण से राज्य सरकारें सेवानिवृत्त आयु 58 वर्ष से 55 वर्ष करने पर आतुर हैं। उदाहरणतया जब आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री एन टी रामा राव ने सेवानिवृत्त आयु को कम करने का निर्णय लिया तो इससे हृदय आघात का प्रकोप बढ़ गया। केवल कुछ एक ग्रामीण अपवादों को छोड़कर वृद्धों का परिवार के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। आय का अपना कोई नियमित स्नातक होने के कारण उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर करना होता है, जो मूल्य वृद्धि एवं जीवन शैली में परिवर्तन के कारण उनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। नंबर दो, स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय समस्याएं, हेल्थ एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स, यह वृद्धों की दूसरी समस्या है। जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वे सौभाग्यशाली हैं। कोई बीमारी ना होने पर भी शारीरिक प्रक्षुब्धता वृद्धायु में कम हो जाती है, परंतु अधिकांश मामलों में बढ़ती हुई आयु किसी न किसी रोग को जन्म दे देती है एवं वृद्ध बिस्तर संभाल लेते हैं, जिससे वे इलाज एवं गतिशीलता के लिए अन्यों पर निर्भर करते हैं। नंबर तीन, पारिवारिक एवं भावनात्मक समस्याएं, फैमिलियल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। जब वृद्धों की अच्छी प्रकार देखभाल नहीं होती तो वे अपने पारिवारिक एवं भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरों पर आश्रिता विशेषतया बीमारी के दौरान स्थिति को और भी अधिक गंभीर बना देती है। अकेलापन वृद्धों के लिए भारयुक्त है, विशेषतया उनके लिए जिनका कोई व्यक्ति साथ रहने के लिए नहीं है। संयुक्त परिवार प्रथा विघटित हो जाने से यह समस्या विकट बन गई है। आज बूढ़ों को स्वयं ही अपनी देखभाल करनी होती है। पृष्ठ संख्या 351। नंबर चार, आवासीय समस्या, हाउसिंग प्रॉब्लम्स। देश में आवासीय समस्या जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ गंभीर बनती जा रही है। कदाचित देहातों में समस्या की गंभीरता इतनी नहीं है क्योंकि वृद्ध देहात में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, परंतु नगरों में वृद्धों को आवासीय सुविधा के अभाव से उत्पन्न कष्ट अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि उनके बड़े बच्चों के पास जो विवाहित आवास छोटा होता है, जिसमें अपने माता पिता को साथ रखना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चे अलग रहना चाहते हैं ताकि वह अपने बड़ों द्वारा स्वतंत्रता पर अतिक्रमण से मुक्ति पा सकें। उपचारिक उपाय, रेमेडियल मेजर्स। वृद्धों की उपरोक्त समस्याओं को उन्हें आवश्यक कल्याण सुविधाएं प्रदान कर यदि समाप्त नहीं किया जा सकता तो कम अवश्य किया जा सकता है। यह सुविधाएं हैं, रोमन का नंबर एक, वृद्धायु पेंशन की उपयुक्त मात्रा जिसे मूल्य वृद्धि के साथ बढ़ाया जाए। रोमन का नंबर दो, सरकारी अस्पतालों एवं औषधालयों में निःशुल्क इलाज तथा विशेष वार्डों एवं बिस्तरों की व्यवस्था। रोमन का नंबर तीन, वृद्धों के लिए आवासीय व्यवस्था अथवा देखभाल हेतु प्रबंध। रोमन का नंबर चार, अकेलेपन की उदासी को दूर करने के लिए मनोरंजन सुविधाएं। रोमन का नंबर पाँच, सामान्य शिष्टाचार देना, उनके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करने हेतु जिनमें कुछ व्यय नहीं होता। उदाहरणतया किसी वृद्ध के लिए रेल टिकट अथवा बस टिकट प्राप्त करने हेतु अस्पतालों में विभिन्न परीक्षण हेतु शुल्क अदा करने, करों तथा बिजली पानी के बिलों का भुगतान करने आदि के लिए लंबी कतार में खड़ा होना अति कठिन है। वृद्धों के लिए अलग काउंटर खोलना अधिक कठिन कार्य नहीं है। कुछ एक देशों में वृद्धों को उचित सम्मान दिया जाता है तथा उनकी उचित देखभाल की जाती है। उदाहरणतया जापान में 15 सितंबर को दादा दिवस ग्रैंड पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है, जब पौत्र अपने दादाओं को पुष्पों के साथ प्रणाम करते हैं, उन्हें उपहार देते हैं। चीन में बुजुर्गों का आदर परंपरीय है। ताइवान ने वर्ष के 9वें चंद्रमा मास के 9वें दिन को राष्ट्र के लिए वृद्ध जनसंख्या के प्रति सम्मान प्रकट करने वाला दिवस घोषित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मई का मास वृद्ध अमेरिकन मास घोषित किया है। कनाडा में जून मास वरिष्ठ नागरिक मास मनाया जाता है। मिस्र में 1989 में अकापुल्को, मैक्सिको में 14वीं अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सम्मेलन में 30 नवंबर के दिन को प्रत्येक वर्ष वृद्धों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। अंतर्राष्ट्रीय हेल्पेज परिषद में नई दिल्ली में 6 अक्टूबर 1990 को आयोजित बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ से वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने का आग्रह किया था, जो वृद्धों की समस्याओं की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान को आकर्षित करने तथा उनके कल्याण हेतु विभिन्न प्रोग्रामों को आरंभ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एवं दिवस की घोषणा करनी चाहिए, जैसा इसने बालकों, महिलाओं एवं युवाओं के लिए किया है, जिसने इन वर्गों के कल्याण हेतु विश्व समुदाय एवं राष्ट्रीय सरकारों की विभिन्न प्रोग्राम व्यापक स्तर पर आरंभ करने के लिए अभिप्रेरित किया है। पृष्ठ संख्या 352। वृद्धों की देखभाल, संयुक्त राष्ट्र की चिंता, केयर ऑफ एज्ड, यूनाइटेड नेशंस कंसर्न। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्धों के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए 1982 के दौरान वियना में आयोजित विश्व वृद्ध महासभा में वृद्धों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना अंगीकृत की थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 में विश्व में वृद्धों की संख्या 1.2 बिलियन हो जाएगी, जिसमें से लगभग 71% विकासशील प्रदेशों में होगी। 1950 एवं 2025 के मध्य विकासशील एवं विकसित प्रदेशों में 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धों की संख्या 60 वर्ष के ऊपर वाले वृद्धों की संख्या से दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं की आयु पुरुषों से अधिक होती है, अतएव वृद्धों में महिलाओं का बाहुल्य होगा। यह सभी प्रवृत्तियों राष्ट्रीय सरकारों मुख्य नीति संशोधनों की मांग करती है। संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित अग्रताओं एवं संस्तुतियों को प्रस्तावित किया है। वृद्धों की विकासीय क्षमता एवं मानवीय आवश्यकताओं को समुचित रूप से समाधान को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय संयंत्र को स्थापित अथवा सशक्त किया जाए। वृद्धों की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, जनसांख्यिकी एवं रोग संबंधी पक्षों पर अनुसंधान के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए। संस्थागत एवं सामुदायिक देखभाल प्रणाली की स्थापना अथवा उसका विस्तार किया जाए, ताकि वृद्ध व्यक्तियों को समुचित स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाएं उपलब्ध हो सकें। वृद्धों के संगठनों जो विकास कार्यक्रमों एवं नीति निर्माण में उनकी क्रियात्मक सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं, को प्रोत्साहित एवं उन्नत किया जाए, तथा नीति निर्माताओं, अन्वेषकों एवं कार्यकर्ताओं को वृद्ध विज्ञान में प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि उन्हें वृद्धता संबंधी मामलों का समुचित ज्ञान हो सके। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन को दृष्टि में रखते हुए सरकार को वृद्धों के कल्याण हेतु समुचित उपाय करने चाहिए। वृद्धों की श्रेणियाँ, कैटेगरीज ऑफ द एज्ड। वृद्धों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे जो सरकार, सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त हुए हैं एवं पेंशन लाभ प्राप्त करते हैं, रोमन का नंबर दो, वे जो 60 की आयु में पहुंचकर सार्वजनिक सहायता अपने को जीवित रखने के लिए ले रहे हैं। इन दोनों श्रेणियों के वृद्धों की अपनी समस्याएं हैं जिनके कल्याण हेतु प्रोग्रामों की आवश्यकता है। पेंशन भोगी वृद्ध, द पेंशनर्स एक्ट, संविधान की धारा 309 में व्यवस्था है कि संघ एवं राज्यगत विषयों के प्रशासन हेतु नियुक्त कार्मिकों की सेवा शर्तें एवं भर्ती संबंधित विधानमंडल द्वारा नियमित की जा सकती है। सरकारें समय समय पर अपने कार्मिकों की सेवा शर्त, जिनमें सेवानिवृत्त लाभ सम्मिलित हैं, निर्धारित करने के लिए नियम एवं विनियमों का निर्माण करती रहती है। सेवानिवृत्त के समय सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं में पेंशन योजना एवं अंशदायी भविष्य निधि योजना सम्मिलित है। सरकारी विभागों में अधिकांश गैर औद्योगिक स्टाफ रेलवे छोड़कर पेंशन स्कीम से तथा औद्योगिक कर्मचारी भविष्य निधि योजना से शासित होते हैं। पेंशन स्कीम में शासित व्यक्ति को सेवानिवृत्त के समय सेवा अवधि के आधार पर अनुवर्ती मासिक पेंशन आजीवन तथा एकमुश्त अनुग्रह राशि मिलती है। भविष्य निधि योजना के अधीन कर्मचारी प्रतिमास अपने वेतन का निर्धारित अंश अपने खाते में भुगतान करता है एवं सरकार भी उसी अनुपात में अंशदान करती है। इस प्रकार कुल जमा राशि का कर्मचारी को सेवानिवृत्त के समय भुगतान कर दिया जाता है। सरकार समय समय पर सेवानिवृत्त लाभों को स्वयं अथवा केंद्रीय वेतन आयोग एवं अन्य निकायों की सिफारिशों पर उदार बनाती रहती है। पृष्ठ संख्या 353। अनुमान है कि इस समय केंद्रीय सरकार ने लगभग 25 लाख पेंशन भोगी हैं तथा इस संख्या में प्रत्येक वर्ष 1 लाख पेंशन भोगियों की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। लगभग इसी संख्या में राज्य के पेंशन भोगी हैं। यदि हम संस्थाओं यथा बैंकों, बीमा कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों के पेंशन भोगियों को भी सम्मिलित कर लें तो कुल योग 70 लाख से कम नहीं होगा। इनकी संख्या में यूनिवर्सिटी तथा महाविद्यालयों के कर्मचारियों को पेंशन सुविधा मिल जाने पर और अधिक वृद्धि हो जाएगी। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि पेंशन भोगी अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष नियोक्ता को देते हैं। ऐसा करने में उन्हें आशा होती है कि सेवानिवृत्ति उपरांत उनकी नियोक्ताओं द्वारा भली प्रकार देखभाल की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय का भी कथन है कि पेंशन कृपा की कोई वस्तु नहीं है, यह कर्मचारी का ठोस अधिकार है। पेंशन भूतकाल में प्रदत्त सेवाओं का भुगतान है एवं यह उनके लिए जिन्होंने अपने जीवन के सुंदर दिनों के लिए अनथक परिश्रम किया है। इस आश्वासन पर कि वृद्धायु में उन्हें सागर के मध्य नहीं छोड़ दिया जाएगा, कल्याण उपाय हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वृद्धों को सामान्य रूप से राहत देने की आवश्यकता के संदर्भ में यह भी टिप्पणी की थी कि वृद्धायु प्रत्येक के चाहे वर्ष राजा हो अथवा महात्मा, श्राइक हो अथवा निम्न जाति का जीवन में आती हो। समाजवाद का लक्ष्य उन सभी व्यक्तियों जिन्होंने समाज को जो कुछ वह दे सकते थे जब वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ थे दे दिया है, को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। जीवन के सायंकाल में राज्य को नागरिकों को जीवन का सुंदर स्तर, चिकित्सीय सहायता, अभाव से स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता एवं आनंद योग विश्राम सुनिश्चित करना चाहिए। पेंशन योजना को अन्य उपलब्ध स्कीमों से बेहतर समझा जाता है, अतः स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालय एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। कुछ ने इसको स्वीकार कर लिया है। पेंशन के अतिरिक्त सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को अर्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान, चिकित्सीय भत्ता निर्धारित दरों पर अथवा चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सुविधा LTC अथवा 2 वर्षों में एक बार 1 मास की पेंशन के बराबर राशि, चश्मे की मूल्य जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। ये सभी लाभ राज्य द्वारा भिन्न भिन्न हैं। प्रत्येक राज्य इनकी मात्रा अपनी वित्तीय स्थिति अनुसार, परंतु अधिक अपनी राजनीतिक इच्छा तथा पेंशनभोगी संगठनों के दबाव के अनुसार निर्धारित करता है। पृष्ठ संख्या 354। सरकारें समय समय पर पेंशनभोगियों की मांगों को स्वीकार करते हुए अपनी स्कीमों में परिवर्तन करती रहती हैं, जिससे बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि को अधिक से अधिकतम निष्प्रभावी बनाया जा सके। मासिक आय सुनिश्चित कराने हेतु यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम एवं अन्य राष्ट्रीय बचत फंड स्कीमों ने पेंशनभोगियों के लाभार्थ अनेक स्कीमें आरंभ की हैं। पेंशन न्यास कोष, पेंशन ट्रस्ट फंड, चतुर्थ वेतन आयोग को पेंशन की नई विचारणा का एक सुझाव कॉमन स्रोत द्वारा दिया गया। इस विचारणा में एक पेंशन न्यास कोष को विकसित करने का विचार निहित है। इस कोष में सरकार कर्मचारी की सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन का अनुवर्ती भुगतान अथवा सेवानिवृत्त कर उनकी कुल पेंशन का भुगतान करेगी। यह न्यास कम से कम 10% ब्याज की गारंटी देगा, जो पेंशनभोगी को मासिक भुगतान के रूप में मिलेगी। जब कभी महंगाई भत्ते की नई किस्त दी जाएगी तो वह पेंशनभोगी के खाते में जमा कर दी जाएगी। कोष का प्रबंध न्यास मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें ख्याति प्राप्त एवं निवेश अनुभवी लोग होंगे। निवेशों से प्राप्त लाभ प्रत्येक वर्ष पेंशनभोगी का भुगतान किया जाएगा। पेंशनभोगी की मृत्यु पर उसका उत्तराधिकारी पेंशनभोगी के खाते में जमा संपूर्ण राशि का अधिकारी होगा। इस राशि में आधी उत्तराधिकारी को तुरंत दे दी जाएगी तथा शेष आधी खाते में जमा रहेगी, जिस पर उस ब्याज एवं लाभ मासिक आधार पर परिवार पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। इस प्रकार की न्यास फंड योजना में पेंशन भोगी को उसे मिलने वाली पेंशन से कम नहीं होगी, जो वास्तव में अधिक से अधिक हो सकती है। पेंशन न्यास फंड के अनेक लाभ हैं। सर्वप्रथम एवं सर्व महत्वपूर्ण यह पेंशन भोगी को अथवा उसकी विधवा को पेंशन पाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे पेंशन निर्धारण, भुगतान एवं लेखा रखने हेतु विविध स्थापनों पर हुए विशाल व्यय की बचत होगी। न्यास के क्रियान्वयन की प्रक्रिया इतना सरलीकृत किया जा सकता है, जिससे सारा कार्य थोड़े से स्टाफ द्वारा पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार न्यास फंड को लाभदायक विकासीय उद्देश्यों हेतु प्रयोग कर सकती है। पेंशन भोगी संतुष्ट नहीं है, उसमें निराशा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार उसके पेंशन को उदार पेंशन स्कीम के अनुसार संशोधित करने में अत्यधिक देर लगी। कुछ एक तो प्रशासकीय तकनीकों के कारण इसका पूरा लाभ नहीं उठा सके। कर्मचारियों को अपनी पेंशन पाने में कई मास, वर्ष तक भी लग जाते हैं। विधवाओं की दशा तो और भी अधिक शोचनीय है, जो अपने पति की मृत्यु पर पेंशन पाने के लिए कार्यालयों में लगातार चक्कर नहीं काट सकती और जिन्हें पेंशन मिलने में नियमों, विनियमों एवं प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण वर्षों लग जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु पत्र प्राप्त करने में उन्हें निरर्थक परेशानी का सामना करना पड़ता है। पृष्ठ संख्या 355। पेंशन भोगियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 1985 में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की स्थापना की थी। इसका दायित्व है केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों का समन्वय एवं नीति निर्माण। चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित सरकार ने 1 जनवरी 1986 में समेकित पेंशन संरचना को आरंभ किया था। न्यूनतम पेंशन पारिवारिक पेंशन 160 से 150 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 375 रुपये प्रतिमास कर दी गई। पेंशन निर्धारण के फार्मूले को सरलीकृत कर दिया गया है तथा पेंशन की अस्थायी संरचना की व्यवस्था की जा रही है। पेंशन के प्रशासन को भी अधिक उत्तरदायी बना दिया गया है, क्योंकि विभाग पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान हेतु केंद्रीय एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है। वृद्धायु पेंशन ओल्ड एज पेंशन औद्योगिक रूप से विकसित एवं धनी देशों में व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों के सुंदर जीवन जीने की आश्वासन प्राप्त है, परंतु हमारे देश में वित्तीय व्यवस्थाओं के कारण वृद्धों को सार्वजनिक सहायता नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त देश में वृद्धों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है और ना ही कोई अधिनियम जिसके अंतर्गत इनको वित्तीय सहायता अथवा पेंशन दी जा सके। ना ही केंद्रीय सरकार का कोई प्रोग्राम सामान्य जनसंख्या को वृद्धायु पेंशन देने का है और ना ही यह राज्य सरकारों को इस कार्य हेतु कोई अनुदान देती है। कल्याण मंत्रालय वृद्धों के कल्याण की केंद्रीय एजेंसी है, जो ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान देता है जो रोजगार उत्पादन, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन आदि के क्षेत्रों में वृद्धों को सेवा प्रदान करती हैं। 1983-84 में इसने 22 संगठनों को 17.95 लाख रुपए का अनुदान दिया। 1987-88 में इसके लिए 27.75 लाख रुपए की व्यवस्था थी। यह वृद्धों से संबंधित समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु शोध अध्ययन भी करता है ताकि नीति निर्माण, नियोजन एवं प्रोग्रामों के लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हो सकें। राज्य एवं संघ प्रदेश सरकारें 65+ वर्षों के निराश्रित वृद्धों को वृद्धायु पेंशन दे रही है, जो 30 रुपये से 70 रुपये प्रतिमास तक है। विधवाओं एवं अशक्ता के लिए आयु में छूट दी गई है। सातवें वित्त आयोग ने पेंशन राशि को बढ़ाकर 65 रुपये प्रतिमास करने की सिफारिश की थी, परंतु यह राशि मूल्यों के असमान वृद्धि के कारण मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अति पर्याप्त है। अतएव कुछ राज्यों ने इस राशि को बढ़ा दिया है, परंतु वांछित सीमा तक नहीं। हरियाणा प्रथम राज्य है जिसने वरिष्ठ नागरिकों को 100 रुपये प्रतिमास की दर पर वृद्धायु पेंशन मंजूर की है। सरकार ने वर्ष 1989-90 में 65 वर्ष की आयु अथवा ऊपर वाले 8.48 लाख वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन देने के लगभग 100 करोड़ रुपए व्यय किए थे। हरियाणा विधानसभा के अनुसार समिति ने सरकार के इस कार्य की अभूतपूर्व प्रशंसा की थी, इसे एक सराहनीय पत्र बतलाया, परंतु इसका विचार था कि 65 वर्ष की आयु अधिक है, अतएव इसे कम किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। पृष्ठ संख्या 356। समिति ने योजना के कुछ दोषों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। यद्यपि पेंशन के पात्र व्यक्तियों की आयु मतदाता सूचियों, चौकीदार की सूचियों, राशन कार्डों एवं मैट्रिक सर्टिफिकेट के आधार पर निर्धारित की जाती है, तदपि अनेक मामलों में पात्र व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि दूसरी ओर कम आयु वाले लोगों को पेंशन मिल रही थी। अतएव सुझाव दिया गया कि राज्यव्यापी सर्वेक्षण कराया जाए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ पहुंच सके। उसने खंड स्तर पर खंड समिति के निर्माण किए जाने की सिफारिश की, जो लाभ भोक्ताओं की पहचान करेगी तथा वृद्धों को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े। पहले पेंशन का भुगतान मनी ऑर्डर द्वारा किया जाता था, परंतु अब सरकार ने इसे अपनी एजेंसियों के माध्यम से भुगतान करना आरंभ कर दिया है, ताकि अनावश्यक देरी एवं अनियमित भुगतान की शिकायतें दूर हो सकें। नई स्कीम के अधीन देहातों में पटवारी एवं ग्रामीण कार्यकर्ता पेंशन का भुगतान करेंगे, जबकि नगरों में न्यायपालिकाओं के कर्मचारी भी इसका भुगतान करेंगे। हिमाचल प्रदेश में वृद्धों को उपलब्ध सुविधाओं के उनके लिए मंडलीय अस्पतालों में वृद्धायु क्लिनिक का खोला जाना, जिला अस्पतालों में विशेष चिकित्सीय देखभाल, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र, स्वसहायता हेतु प्रशिक्षण, वृद्ध क्लब एवं अस्पतालों तक जाने के लिए बसों में निःशुल्क यात्रा सम्मिलित है। सेवानिवृत्त व्यक्तियों एवं वृद्धों को उपलब्ध सुविधाएं तथा रियासतें राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। प्रत्येक राज्य संघ राज्य की इस हेतु अपनी अपनी स्कीम है। वांछनीय है कि देश भर में वृद्धों के लिए एक रूप सेवानिवृत्त लाभ एवं सुविधाएं होनी चाहिए। यदि कोई राज्य वित्तीय व्यवस्थाओं के कारण केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित एक रूप योजना का अनुसरण नहीं कर सकता, तो उसे वांछित सीमा तक केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिए। वृद्धों की देखभाल हेतु स्वयंसेवी संगठन वॉलेंटियरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द केयर ऑफ एज्ड, वृद्धों की देखभाल एवं उनके कल्याण से संबंधित अनेक स्वयंसेवी संगठन एवं समितियां हैं। हेल्पेज इंडिया एवं एयरकेज इंडिया विशेष रूप से वर्णनीय हैं। यह जानने के लिए कि वृद्धों की देखभाल के क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, हेल्पेज इंडिया की स्थापना इंग्लैंड में हेल्प द एज्ड सोसाइटी के प्रतिरूप 1978 में हुई थी। यह वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल एवं उनके हितों के लिए निर्मित एक स्वयंसेवी संगठन है, जो देश भर में कार्य करता है एवं जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रमुख नगरों में 22 केंद्र हैं। युवा पीढ़ियों में वृद्धों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के अतिरिक्त यह अनेक आयोजित प्रतियोगिताएं यथा चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं दादा समारोह आदि को भी संचालित करता है। पृष्ठ संख्या 357। कभी एनएसएस स्वयंसेवियों की सेवाओं का प्रयोग भी ऐसी गतिविधियों तथा वृद्धों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोष एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इन सुविधाओं में सम्मिलित हैं वृद्धों के लिए घर, दिवस केंद्र, वृद्ध वार्ड, चलती फिरती मेडिकेयर यूनिटें, नेत्रहीन वृद्ध, शारीरिक तौर पर बाधित एवं कुष्ठ रोगियों तथा मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा कराने वालों का पुनर्वास। हेल्पेज इंडिया वृद्धों की देखभाल प्रदान करने के कार्यक्रमों में संलग्न प्रादेशिक स्वयंसेवी संगठनों के व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी करती है। इसके अतिरिक्त यह वृद्ध देखभाल परियोजना हेतु तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान करती है। अपने प्रारंभ में इसने लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से 700 ऐसी परियोजनाओं को प्रायोजित किया है। हेल्पेज स्वयं ऐसी परियोजनाओं को परिचालित नहीं करता, यह प्रादेशिक वृद्धायु स्वयंसेवी संगठनों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता द्वारा ऐसी परियोजनाओं एवं प्रोग्रामों के संचालन में सहायता करता है। हेल्पेज द्वारा प्रतिबंधित केवल चलती फिरती मेडिकेयर यूनिट का संचालन है, जो नई दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में 150 से 200 रोगियों को प्रतिदिन मेडिकेयर सुविधाएं प्रदान करती है। एक पितामह को अंगीकार करो स्कीम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वृद्धों को उनके द्वार पर पुनर्वास की व्यवस्था करने के बारे में प्रोग्राम है। यह स्कीम अंतर्राष्ट्रीय हेल्पेज द्वारा प्रायोजित स्कीम है एवं इसके अधीन वृद्ध को 64 पाउंड प्रत्येक वर्ष विदेशों में उनके प्रायोजकों द्वारा उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिए जाते हैं। हेल्पेज ने 27 विभिन्न आकर्षक डिजाइनों में शुभकामना कार्ड भी तैयार किए हैं तथा इसके अतिरिक्त यह अपने प्रियजनों को भी नए वर्ष की शुभकामना भी भेजता है। इन कार्डों के क्रेता वृद्धों की देखभाल एवं जरूरतमंद वृद्धों की सुविधा प्रदान करने का संदेश प्रचारित करते हैं। हेल्पेज ने अक्टूबर 4, 1990 को नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना करके अपनी गतिविधियों में एक नए आयाम को जोड़ा है। इस केंद्र का कार्य वर्तमान एवं परिवर्तित संदर्भ में वृद्धों की देखभाल से संबंधित मामलों एवं समस्याओं का अध्ययन करना है ताकि हेल्पेज द्वारा व्यथित फंडों से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में उत्तम तकनीकों को विकसित किया जा सके। वृद्धायु देखभाल इंडिया एज केयर इंडिया। वृद्धायु देखभाल इंडिया की स्थापना 1980 में की गई थी। इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य थे 50 वर्ष से ऊपर की आयु के पुरुषों एवं स्त्रियों को निवासीय आवासीय एवं संस्थागत सुधारों के माध्यम से शैक्षिक मनोरंजनात्मक सामाजिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक सेवाएं प्रदान करना, मेडिकल सेवाओं, अर्धकालिक रोजगार, आय वृद्धि हेतु भ्रमणों एवं यात्राओं की व्यवस्था, करों, शुल्क, संपत्ति, पेंशनों एवं अन्य आर्थिक अथवा वित्तीय आवश्यकताओं हेतु व्यावसायिक परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था करना, वृद्धों की समस्याओं के बारे में अध्ययन एवं अनुसंधान करना एवं अध्ययन केंद्रों, गोष्ठियों, मनोरंजन समूहों, रैलियों आदि की व्यवस्था करना तथा वृद्धों एवं युवा पीढ़ियों के मध्य बेहतर सामाजिक एकीकरण एवं सद्भावना हेतु उचित वातावरण तैयार करना। इसकी सदस्यता 21 वर्ष की आयु से ऊपर शारीरिक तौर पर सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, बिना किसी भेदभाव के खुली है। इसके सदस्य 4 प्रकार के हैं, संस्थापक सदस्य, आजीवक सदस्य, संस्थागत सदस्य एवं अस्थायी सदस्य। ऐसे सदस्यों के पति पत्नी स्वयमेव आश्रित सदस्य बिना किसी शुल्क के बन जाते हैं। इस समय इसके 1300 सदस्य हैं। इसकी आय के साधन हैं प्रदेश एवं सदस्यता शुल्क, दान तथा सरकार से सहायता अनुदान। इसका प्रबंध एक शासक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा 7 निर्वाचित सदस्य होते हैं। महासचिव प्रमुख का कर्मचारी होता है। यह विशिष्ट कार्यों के लिए समितियों का निर्माण करती है। विभिन्न राज्यों एवं संघ प्रदेशों में इसकी शाखाएं हैं। यह जनता की सामान्य शिक्षा हेतु एक मासिक पत्रिका एच केयर न्यूज प्रकाशित करती है। समिति दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में चलती फिरती मेडिकल यूनिटों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराती है। इसके मेडिकल अधिकारी एवं स्वयंसेवी सड़कों पर कम से कम लागत के सामयिक कैंपों का आयोजन करते हैं जिनसे निम्न आय वर्ग के तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के वृद्धों का इलाज किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह वृद्धों से संबंधित प्रमुख विषयों पर नियमित वार्ताएं एवं विचार विमर्श आयोजित करती है ताकि जन चेतना उत्पन्न हो सके, वृद्धों की सामाजिक एवं चिकित्सीय देखभाल हेतु सामाजिक सेवा को अभिप्रेरित किया जा सके तथा उनके कल्याण व वर्धन के लिए उपायों एवं साधनों को तलाश किया जा सके। यह उस समय 5 दिवसीय देखभाल केंद्र चला रही है एवं वृद्ध व्यक्तियों को अनेक प्रकार सेवाएं यथा स्वास्थ्य देखभाल, परामर्शीय, पुस्तकालय एवं वाचनालय, विश्राम एवं आराम के लिए सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों प्राप्त हैं। इसने आर्थिक रूप से कमजोर दरिद्र वृद्धों, विशेषतया निर्धन ग्रामीण वृद्धों को 50 रुपये मासिक पेंशन देना भी आरंभ किया है। इसके लिए नियमित दानकर्ता राशि प्रदान करते हैं। इसने अभी हाल ही में चलते फिरते वृद्ध स्वास्थ्य परीक्षण कैंपों ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया है, जिनको उनके द्वार पर कोई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं करती। इसने इस प्रयोजन हेतु दिल्ली के चारों ओर कुछ देहातों को भी अपनाया है। यह मध्यम एवं उच्च वर्गों के वृद्धों, विशेषतया विधवाओं, विधुरों, अकेले व्यक्तियों अथवा आवासहीन दंपतियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भुगतान वाले घरों एवं छात्रावासों को स्थापित करने की आवश्यकता को अनुभव करती है, परंतु यह ऐसा अभी भूमि की अप्राप्यता एवं फंडों के अभाव के कारण नहीं कर सकती। आशा है कि सरकार एवं दानशील व्यक्ति इस पवित्र कार्य के लिए इसकी सहायता हेतु आगे आएंगे, ताकि यह जरूरतमंद वरिष्ठ व्यक्तियों को वृद्ध की आवास गृहों की सुविधा प्रदान कर सकें। एज केयर इंडिया एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, जिसका पंजीकरण 18 नवंबर 1981 को समिति पंजीकरण कानून 21/1860 के अधीन एक अराजनीतिक, अलाभीय, धर्मनिरपेक्ष, परामर्थी, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण के रूप में देश के वृद्ध लोगों के कल्याण हेतु हुआ था। यह 18 नवंबर का दिवस प्रतिवर्ष एल्डर डे के रूप में मनाती है, जिसमें 80 वर्ष की आयु के ऊपर वृद्ध व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है तथा युवा पीढ़ी के सम्मुख परिवार एवं समुदाय में वृद्धों की उचित देखभाल के हमारी प्राचीन परंपरा के संरक्षण हेतु उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। यह वांछनीय होगा कि अन्य गैर सरकारी संगठन भी वृद्धों के कल्याण हेतु प्रोग्रामों को चलाने के लिए आगे आएं।